दिन भर रविवार 12 जून मैं हूं निखिल रंजन। अमेरिका के ऑरलैंडो शहर की नाइट क्लब में गोलीबारी, 20 लोगों के मरने की आशंका, पुलिस कार्रवाई में हमलावर की भी मौत। पंजाब के फजलका में दो घुसपैठिए सुरक्षा बलों की गोली से मरे, एक जिंदा गिरफ्तार। इलाहाबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का पहला दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे। मराठी फिल्म निर्देशक नागार्जुन मंजुल को क्यों नहीं पसंद मुंबईया फिल्में?
इससे बेहतर है कि आप फैशन टीवी देख लो, मतलब इतना बुरा लगता है कि आप पोस्टर से ही पता चलता है कि लेडी का क्या रोल है, आप पोस्टर भी देखो।
नागार्जुन से संडे दिन भर में खास मुलाकात, थोड़ी देर में पहले प्रमुख विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। अमरीकी शहर ऑरलैंडो में पुलिस ने कहा है कि एक नाइटक्लब में तड़के हुए एक हमले में 20 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने पुष्टि की है कि हमलावर के पास एक असॉल्ट राइफल और एक हैंडगन थी। हमलावर ने कई लोगों को बंधक बना लिया था और पुलिस पर गोलियां चलाई। बाद में जवाबी हमले में हमलावर की मौत हो गई। फ्लोरिडा में अधिकारियों का कहना है कि इस घटना को चरमपंथी घटना मानकर इसकी जाँच की जा रही है। इराक से आ रही खबरों के अनुसार मोसुल शहर के दक्षिण में सरकारी बलों ने खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले चरमपंथी समूह इस्लामिक स्टेट पर हमला किया है। सेना के स्रोत का कहना है कि टैंक और हथियारों से लैस गाड़ियों में सरकारी सेना अमरीकी गठबंधन सेना के नेतृत्व में हो रहे हवाई हमले के साथ आगे बढ़ रही है। हमले मोसुल से 50 किलोमीटर दूर गाँवों पर किए जा रहे हैं, जिन्हें देश के उत्तर में इस्लामिक स्टेट का गढ़ माना जाता है। मोसुल के दक्षिण में मौजूद 9th आर्म्ड डिवीजन के एक इराकी सैनिक ने शहर के निवासियों को कहा, फलूजा, गारमा, सलाहुद्दीन और कई और जगहों में कई इलाकों को आजाद कराने के बाद अब हम कायरा की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो हम जीत जाएंगे। हमने कई जगहों को आजाद कराया है और मोसुल में अपने लोगों से कहना चाहते हैं कि आप लोगों ने बहुत धैर्य दिखाया और अब हम आ रहे हैं आपको तकलीफों से आजादी दिलाने, इंशाल्लाह। ये थे मोसुल के दक्षिण में मौजूद 9th आर्म्ड डिवीजन के एक इराकी सैनिक। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। लीबिया की नई सरकार समर्थित सेना पर शहर सिरते में कथित तौर पर खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले चरमपंथी समूह के लड़ाकों ने 3 आत्मघाती कार धमाके किए हैं। एक सरकारी प्रवक्ता का कहना है कि उनके एक जवान की मौत हो गई है और कई अन्य घायल हुए हैं। सिरते शहर की सड़कों पर घमासान युद्ध छिड़ा हुआ है। सिरते पर साल भर पहले इस्लामिक स्टेट ने कब्जा कर लिया था। सरकार उन्हें यहां से खदेड़ने की कोशिश कर रही है। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 6 दिन की यात्रा के लिए आज अफ्रीका रवाना हुए। वे घाना, आइवरी कोस्ट और नामीबिया जाएंगे। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुखर्जी भारत और अफ्रीका में व्यापार बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। बढ़ते भारतीय उद्योग की जरूरतों के लिए अफ्रीका को तेल और खनिज पदार्थों के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण माना जाता है और भारत अफ्रीका के साथ मजबूत संबंध स्थापित करना चाहता है, जहाँ चीन पहले से ही एक बड़ा निवेशक है। ब्रितानी प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने एक बार फिर कहा है कि अभी दशकों तक तुर्की के यूरोपियन यूनियन के सदस्य बनने की कोई संभावना नहीं है। ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन से बाहर जाने का समर्थन करने वालों का कहना है कि तुर्की के इसमें आने से ब्रिटेन में शरणार्थियों के आने की संख्या बढ़ेगी। बीबीसी समाचार।
बीबीसी रेडियो पर दिनभर में आपका स्वागत है, मैं हूं निखिल रंजन। आज रविवार है लेकिन अमेरिका से जो खबरें आ रही हैं वो काफ़ी बेचैन करने वाली हैं। फ्लोरिडा के शहर ऑरलैंडो की एक गे नाइट क्लब में हुई गोलीबारी में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। अपुष्ट खबरों में 20 लोगों के मारे जाने की बात कही गई है। पुलिस इनकी पहचान करने में जुटी है। घटनास्थल पर सुरक्षा बल और बचाव दल के सदस्य अभी भी मौजूद हैं। घायलों का इलाज चल रहा है। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए वैभव श्रीवास्तव से।
ये आवाज थी एंथनी टॉरेस की, जो अमरीकी शहर ऑरलैंडो के एक पुरुष समलैंगिक नाइटक्लब पल्स में हुई गोलीबारी से बच निकले। देर रात हुई इस गोलीबारी में 20 लोग मारे गए और 40 से ज्यादा घायल हुए हैं। ऑरलैंडो पुलिस विभाग ने ट्वीट के जरिए बताया कि हमलावर मारा गया है। क्लब के अंदर फंसे लोगों के रिश्तेदार अपने परिजनों की जानकारी के लिए लगातार स्थानीय अस्पताल के बाहर इकट्ठा हो रहे हैं। इन्हीं में से एक महिला ने कहा कि उनकी बेटी ने उन्हें मैसेज और फोन करके बताया कि उसके हाथ में गोली लगी है। एक स्थानीय पत्रकार स्टुअर्ट मूर ने कहा कि उनके एक दोस्त अब भी नाइट क्लब में हैं और वो घायल भी हैं। गोलीबारी के वक्त क्लब में मौजूद चश्मदीद क्रिस्टोफर हैंसन ने बताया कि गोलियों की आवाज आते ही क्लब के अंदर भगदड़ मच गई थी। ऐसा लग रहा था मानो हम एक गन रेंज में खड़े हों और गोलियों की ही आवाजें आ रही थी। मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कुछ भी पता था जब तक हमने लोगों को जमीन पर पड़ा नहीं देखा। लोग चिल्ला रहे थे, बहुत खून था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। चश्मदीद क्रिस्टोफर हैंसन के शब्द। एक अन्य ट्वीट में पुलिस ने कहा है कि हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि इस हमले में बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं और घायल भी हुए हैं। इससे पहले मिली जानकारी के अनुसार हमलावर ने कुछ लोगों को बंधक भी बना लिया था। एक स्थानीय टीवी के पत्रकार ने ट्वीट में कहा है कि उन्हें सूत्रों से जानकारी मिली है कि 20 लोगों को गोली लगी है। एक अज्ञात चश्मदीद ने बताया कि उनके दो दोस्त अब भी क्लब के अंदर ही हैं। हमने गोली की आवाज सुनी, सब जमीन पर थे, सब भागने ही वाले थे कि अचानक फिर से गोलीबारी की आवाजें आईं। हम जमीन पर ही रेंग रहे थे। मेरे साथ में दो दोस्त भी थे, एक के हाथ पर और दूसरी की टांग पर चोट लगी थी। एक अज्ञात चश्मदीद के शब्द। घटना स्थल के कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं जिनमें घायलों का इलाज होता और घटना स्थल पर एम्बुलेंस को देखा जा सकता है। ये घटना ऐसे वक्त हुई है जब ऑरलैंडो शहर 22 वर्षीय गायक क्रिस्टीना ग्रिमी की मौत की खबर से जूझ रहा है, जिन्हें एक संगीत कार्यक्रम के बाद ऑटोग्राफ लेने के बहाने आए 26 वर्षीय केविन जेम्स लॉयबल ने अचानक गोली से मार दिया था। दोनों ही हादसों में हमले की वजह का पता नहीं चल पाया है।
रिपोर्ट सुना रहे थे वैभव श्रीवास्तव। और अभी अभी खबर आई है कि हमलावर की पहचान उमर सिद्दीकी मतीन के रूप में की गई है। ऑरलैंडो के पुलिस प्रमुख जॉन मीना ने इस बात की पुष्टि की है कि इस घटना को अंजाम देने वाले हमलावर की मौत हो गई है।
Our SWAT officers exchanged gunfire with the suspect. The suspect is dead. He appeared to be carrying an assault-type rifle and a handgun.
जॉन मीना कह रहे थे कि हमारे सुरक्षा कर्मियों के साथ इस हमलावर की मुठभेड़ हुई जिसमें हमलावर की मौत हो गई। उसके पास दो अलग अलग बंदूकें थी, साथ ही कोई एक उपकरण भी। हमें एक उपकरण और हमलावर की गाड़ी मिल गई है। हम इस जगह की सफाई कर सब निकाल रहे हैं। अफसोस है कि कुछ लोग नाइट क्लब में हुई गोलीबारी में मारे गए हैं, लगभग 20। ऑरलैंडो के पुलिस चीफ के शब्द। जैसा कि आपने सुना, पुलिस अभी मरने वालों की संख्या साफ तौर पर पुष्टि नहीं कर रही है। ये संख्या भी बदल भी सकती है। कम से कम 42 घायल लोग हैं जिनका इलाज अस्पतालों में चल रहा है। शहर का कानून व्यवस्था संभालने के लिए जिम्मेदार विभाग ने इसे चरमपंथ की कार्रवाई तो माना है, लेकिन ये साफ नहीं कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय चरमपंथ या फिर स्थानीय। इसे विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे अगले कार्यक्रम घटनाचक्र में। फिलहाल लौटते हैं भारत। यहाँ भारत में पंजाब में सीमा सुरक्षा बल BSF की कार्रवाई में दो तस्करों की मौत हो गई है, जबकि एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। कार्रवाई फजिलका में हुई और सुरक्षा बलों ने इनके पास से 15 पैकेट बरामद किए हैं जिनमें 15 किलो हेरोइन होने की बात कही जा रही है। इसके साथ ही भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी इनके पास से मिला है। पूरा ब्यौरा लेकर आए हैं रविंदर सिंह रॉबिन।
पंजाब के भारत पाक सीमा के साथ सटे अबोहर सेक्टर में BSF के जवानों ने दो पाकिस्तानी तस्करों को मार गिराया और एक तस्कर को जिंदा पकड़ लिया है। घटना की पुष्टि BSF बॉर्डर रेंज के इंस्पेक्टर जनरल अनिल पालीवाल ने की है। BSF ने बाद में किए सर्च ऑपरेशन में 15 पैकेट हेरोइन के, दो पिस्तौल, एक राइफल और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया है। घटना सुबह 2:30 बजे के करीब की थी जब BSF के जवानों ने सीमा पर स्थित सोहाना चौकी पर एक संदिग्ध हलचल महसूस की। सीमा सुरक्षा के जवानों ने तस्करों को जब ललकारा तो उन्होंने BSF के जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में जवानों ने भी फायरिंग की और दो तस्कर मारे गए। इस पर अधिक जानकारी देते हुए अनिल पालीवाल IG बॉर्डर रेंज ने BBC को बताया,
रात के टाइम में तस्करों का मूवमेंट हुआ और इन्होंने यहाँ पे पाइप मेथड से हेरोइन स्मगल करने की कोशिश की। इंडियन साइड से इंडियन स्मगलर्स का मूवमेंट भी उसी समय था और जो BSF की पार्टी है उसके ऊपर काफ़ी हैवी फायर आया अक्रॉस द बॉर्डर और स्मगलर्स की तरफ से। जवाबी कार्रवाई के अंदर तो दो स्मगलर पाकिस्तान के मारे गए, एक स्मगलर घायल हो गया जिसे तुरंत गिरफ्तार करके चिकित्सा के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। और फैंस के इस तरफ पुलिस की और बीएसएफ की ज्वाइंट टीम ने दो इंडियन स्मगलर्स को भी तुरंत, जो मौके से भाग रहे थे हेरोइन के पैकेट्स के साथ, उनको पकड़ लिया। इस पूरे ऑपरेशन के अंदर लगभग 15 केजी हेरोइन बरामद हुई है, पिस्टल्स बरामद हुई है और 12 बोर की बंदूक, एम्युनिशन और मोबाइल वगैरह बरामद हुआ है। अभी इलाके की सर्च चल रही है।
गुरदासपुर और पठानकोट में टेरर अटैक के बाद सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। इस पर अधिक जानकारी देते हुए पालीवाल का कहना था,
पंजाब बॉर्डर के ऊपर जो सभी सिस्टर एजेंसीज हैं, बीएसएफ, पंजाब पुलिस, बाकी सेंटर की और स्टेट की एजेंसी सक्रिय रहती हैं और हमारी लगातार कोशिश रहती है कि हम इस तरह के जो अटेम्प्ट्स हैं उनको काउंटर करें और बॉर्डर को पूरी तरह सिक्योर रखें।
गत 5 महीनों में बीएसएफ ने सीमा पर से लगभग 120 किलो हीरोइन रिकवर की है। 6 पाकिस्तान स्मगलर मारे हैं, 1 को जिंदा गिरफ्तार किया है और इसके अलावा भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया है। हालांकि भारत पाकिस्तान सीमा पर पंजाब बॉर्डर पर कंटीली बाढ़ लगी है, बीएसएफ की मुस्तैदी भी रहती है, पर सीमा पर ऐसी कई जगहों से नदियां और नालों की एक ऐसी जगह भी है जहां पर फेंसिंग नहीं है और कई जगह पर बोट नाके लगते हैं। तस्कर अपने लिए कोई ना कोई जगह खोजने का प्रयास भी करते हैं, पर बीएसएफ की मुस्तैदी से इनमें से काफी प्रयास विफल कर दिए जाते हैं।
रिपोर्ट सुना रहे थे रविंदर सिंह रॉबिन।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
बीबीसी रेडियो पर आप सुन रहे हैं दिनभर निखिल रंजन के साथ। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए बैठक और बैठक के स्थान का खास महत्व देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठक में पहुंच चुके हैं। पहले दिन की बैठक के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिनभर चली बैठक की कार्रवाई का ब्यौरा मीडिया के सामने रखा। हालांकि रविशंकर प्रसाद ने शुरुआत पिछली सरकार की आलोचना से की।
उस सरकार में हर मंत्री अपने को प्रधानमंत्री समझता था और प्रधानमंत्री को कोई प्रधानमंत्री नहीं समझता था, तो निर्णय की पंगुता, प्रधानमंत्री के पद का अवमूल्यन, ये पूर्व की सरकार के लक्षण थे। हमारी सरकार नो पॉलिसी पैरालिसिस, डिसाइसिव लीडरशिप। नरेंद्र मोदी जी की सरकार, निर्णायक नेतृत्व, निर्णय पंगुता का अभाव।
इसके बाद बारी आई अपने सरकार की उपलब्धियों को बताने की। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 4 प्रमुख बिंदुओं के जरिए इस बात को पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कार्यकारिणी के सामने रखा है।
पूर्व की सरकार में द्वंद होता था, डायलेमा, कि शहर का विकास हो या गांव का विकास। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने गांव और शहर के विकास के बीच संतुलन का सेतु स्थापित करने का प्रयास किया है। दूसरा, रिफॉर्म हो या जन कल्याण का काम किया जाए, सुधार हो या जन कल्याण का काम किया जाए। मोदी जी की सरकार, सुधार भी जरूरी है और सुधार के साथ जन कल्याण भी हो सकता है। तीसरा, सरकार चलाएगी पॉलिटिकल लीडरशिप या नौकरशाह, इसको लेकर बहस चलती थी। इस सरकार ने उस डायलेमा को भी समाप्त किया है, उस द्वंद को भी समाप्त किया है। पॉलिटिकल लीडर्स फैसले करेंगे, ब्यूरोक्रेसी उसे क्रियान्वित करेंगे। इस द्वंद को भी हमारी सरकार ने समाप्त किया है और औद्योगिक विकास देश के लिए जरूरी है, ये फैसला भी किया है। चौथा जो डिस्कनेक्ट था रक्षा नीति और विदेश नीति के बीच, उस द्वंद को भी समाप्त किया है।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद। बैठक पर विस्तार से चर्चा हम अपने अगले कार्यक्रम में करेंगे। फिलहाल वक्त हो गया है संडे दिनभर का। आज रविवार है और आप जानते हैं कि इस दिन हम आपकी एक खास मुलाकात कराते हैं। महाराष्ट्र में इन दिनों एक मराठी फिल्म ने धूम मचा रखी है। फिल्म का नाम सैराट है और इसे मराठी में अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बताया जा रहा है। तो आज संडे दिनभर में हम आपकी मुलाकात इसी फिल्म के निर्देशक नागराज मंजुले से करा रहे हैं। नागराज से बात की है हमारे सहयोगी विदित मेहरा ने।
नमस्कार, संडे दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विदित। आज हमारे मेहमान हैं मराठी फिल्म सैराट के निर्देशक नागराज मंजुले। फिल्म सैराट मराठी सिनेमा की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है और उसी के चलते हमने बात की फिल्म के निर्देशक नागराज मंजुले से। नागराज जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका बीबीसी में और मुबारक हो कि आपकी फिल्म जो है सैराट वो मराठी सिनेमा की हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म बन गई है और उसने तो शाहरुख खान की फिल्म फैन को भी पछाड़ दिया है बॉक्स ऑफिस पर। क्या कहेंगे आप इस पर?
और वो भी सिर्फ महाराष्ट्र में बिजनेस करके। खुशी होती है कि एक बहुत प्यार से, बहुत जेन्युइनली हम जो फिल्म बनाना चाहते थे और हमने हमारा काम किया। हम कुछ ये नहीं सोच रहे थे कि ये क्या करेगी या कितना बिजनेस करेगी। हालांकि हम जानते थे कि ये लोगों को पसंद आएगी, लेकिन आगे जाके इतना कुछ कर पाएगी ये ना सोचते हुए भी इतना कुछ किया है तो बहुत खुशी होती है फिल्म मेकर के तौर पर। आप जिन फिल्मों के नाम ले रहे हैं, वैसे हम भी फैन हैं इन लोगों के, तो आपने सब पसंदीदा लोगों का काम और उससे अगर हमारा कंपेयर हो रहा है तो बहुत बढ़िया और खुशी की बात है
जी। और सैराट रीजनल सिनेमा के लिए कितनी बड़ी फिल्म है नागराज?
बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो एकदम क्या कहते हैं ना कि जेन्युइनली ऑथेंटिक फिल्म बनती है ना, तो ओरिजिनल सिनेमा बहुत सारी बन सकती है। बॉलीवुड में एक तरीके से बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही कुछ अलग टाइप का फिल्म बन रहा है। और छोटे छोटे रीजन में पहले बंगाली सिनेमा था या जो भी अच्छी अच्छी फिल्में बनती थी वो कंटेंट होके भी शायद पहुंच नहीं पाती थी। सत्यजीत रे से लेके जो भी अच्छा आदुर गोपाल कृष्णन हो या सबकी फिल्में हम देख नहीं पाते हैं क्योंकि वो रीजन तक सीमित रह जाती थी। लेकिन ये बहुत ही बड़ी और अच्छी बात है कि अगर सैराट मैं अभी भी देख रहा हूँ, बहुत सारे फोन कॉल आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस मुझे आ रहे हैं हर जगह से, हर रीजन से, चेन्नई से लेके मतलब हैदराबाद जैसा हर जगह हाउसफुल चल रहा है, दिल्ली से, और लोग खुद मांग कर रहे हैं हमें फिल्म देखनी है, हमारे रीजन में लगाओ। दिल्ली से बहुत सारे ऐसे फोन आए कि ये गुड़गांव में है या दूसरा एक रीजन है वहाँ है, तो टाउन में जो मेन है वहाँ पे ये फिल्म क्यों नहीं है। तो बहुत अच्छा लगता है कि मराठी फिल्म होते हुए ये जो मराठी की सीमाएं लांग के दूसरी जगहों पे जाके इतना अच्छा काम कर रही है और लोगों को पसंद आ रही है, तो बहुत अच्छा लगता है।
मंजले साहब, ये जो एक टैग मिल जाता है ना, जैसे मराठी फिल्म्स हों, गुजराती फिल्म्स हों, इन्हें रीजनल फिल्म्स कह के बुलाया जाता है, रीजनल सिनेमा के अंदर इनको कैद कर दिया जाता है, तो क्या आपको लगता है कि इससे थोड़ा सा नुकसान होता है?
देखिए, ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम भारत जो है ऐसे ही हैं, मतलब हम अलग अलग भाषाओं से, छोटे छोटे राज्यों से, मतलब राज्यों से बन के एक भारत की आइडेंटिटी है। मैं जब पिछली दफ़ा अमेरिका में गया था तो हम बात कर रहे थे फ्लाइट में, तो एक अमेरिकन एक डेंटिस्ट लेडी थी, तो वो हमसे बात कर रही थी, उसके साथ कोई तमिलनाडु का एक बंदा बात कर रहा था, फिर उसने मैं भी बात करने लगा तो कहा कि आप दोनों इंडियन हो, हमने कहा हाँ, तो आप आपस में आप अपनी भाषा में बात करो, तो हम नहीं कर पाए, हम इंग्लिश में ही बात कर रहे थे क्योंकि वो हिंदी नहीं जानते थे, मैं उनकी लैंग्वेज नहीं जानता था। तो तब मुझे पता चला कि हम एक देश में रह के भी हम बहुत अलग अलग देश जैसे ही हैं, तो अलग अलग भाषा है, हमारी जो कल्चर है वो भी अलग है, तो ये तो पता होना चाहिए। और क्या हो रहा है, मतलब साहित्य का शायद ये एक्सचेंज होता रहता है थोड़ा बहुत, वो भी बहुत बड़े पैमाने पे नहीं होता है, लेकिन फिल्म में तो जाना चाहिए क्योंकि फिल्म एक अलग माध्यम है। शायद आपको लैंग्वेज ना भी समझ आए, फिर भी आप फिल्म समझ सकते हैं, और मैं मानता हूँ कि सबटाइटल के साथ डब होके हमारे यहाँ का मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं हॉलीवुड वाले तो तमिल तेलुगु मराठी में भी डब करके, अभी शायद मराठी में अभी नहीं हुआ लेकिन होगा, और यहाँ पे वो मार्केट ये करेंगे। और हम लोग ऐसे हैं कि हम सोचते कम हैं और बहुत छोटा सोचते हैं, कम चाहते हैं, तो ये भी हमारी मर्यादा है।
आपने अभी तक दो इंटरव्यूज दिए हैं BBC को और दोनों में ही आपने ये कहा है कि आपको बॉलीवुड इतना कोई खास पसंद नहीं है नागराज जी, ऐसा क्या बुरा है मतलब बॉलीवुड में?
देखिए, इससे बेहतर है कि आप फैशन टीवी देख लो, मतलब इतना बुरा लगता है कि आप पोस्टर से ही पता चलता है कि लेडी का क्या रोल है। आप पोस्टर भी देखोगे तो वो जिस अंदाज से खड़ी है, जिस अंदाज से उन्होंने कपड़े पहने, तो लगता नहीं कि कुछ कहानी देखने जा रहा है, एक शो हो, एक एंटरटेनमेंट पैकेज हो, तो उस तरीके से तो मुझे कोई तकरार नहीं है। लेकिन ये कब तक देखें, और मुझे अभी भी लगता है कि कहानी कहने की और सुनने की बहुत पुरानी इंसानों की आदत है और उसमें रुचि है, तो मुझे लगता है उस तौर पर ना कहानियाँ बननी चाहिए। और जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं, जो इतनी सारी एक्ट्रेस हो सकती है जो अच्छा काम करना चाहती हैं, ये मैंने कह रहा हूँ कि इंडिविजुअल ये हो रहा है, लेकिन एक होता है ना कि हम बनते बनते क्यों ऐसे बन जाते पता नहीं, कि उसी टाइप का फिल्म बनते रहता है, उसी टाइप की हीरोइन बनती रहती है, आइटम सॉन्ग है, तो ये एक हद तक ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा हो जाए तो लगता है कि यार इससे कुछ बेहतर हम देखना चाहते हैं।
आपने अभी हमें बताया कि आपको थोड़ा सा अटपटा लगता है जिस तरह से एक्ट्रेसेस को फिल्मों में दिखाया जाता है, तो आपके हिसाब से किस तरह दिखाना चाहिए फीमेल एक्टर्स को फिल्मों में?
मुझे लगता है कि औरत को उसी अंदाज से प्रेजेंट करना चाहिए जिस अंदाज से वो हो सकती है या है असल जिंदगी में, और कुछ ना कुछ तो रियलिटी का या इसका होना चाहिए। अभी फिल्में तो हमें प्रभावित करती है और हम उस तरीके से जीने लगते हैं या कपड़े पहनते हैं, तो ये तो ढूंढना मुश्किल है कि क्या हो रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत सारा इतनी कुछ कहानियां हो सकती हैं, औरतों के किरदार बहुत निखर के आ सकते हैं या रियलिटी बहुत निखर के आ सकती है, और कॉमेडी फिल्म भी है, एंटरटेनिंग भी है, वो भी एंटरटेनमेंट करना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि आप स्पाइडरमैन जैसी फिल्म बनाओ, कुछ लगे कि यार हाँ इंसेप्शन या बैटमैन, मुझे लगता है कि यार क्या फिल्में हैं, हम तो कब सोचेंगे ऐसा, कब करेंगे, हमारे तो सारे बैटमैन हैं, सारे सुपर हीरो हैं, और तमिल तेलुगु फिल्म देखता हूँ तो मुझे तो बहुत हंसी आती है कि यार एक केले से आदमी दूसरे आदमी को काट रहा है, फेंक के मार रहा है, वो उधर से गोलियां मार रहा है मशीन गन से और ये पकड़ के हाथ से उनको मार देता है। ये तो वो तो सदमे में आ जाएंगे हॉलीवुड के हीरो और डायरेक्टर की, हमारे यहाँ पहले से बचपन से सब लोग सुपर हीरोज हैं।
मंजले साहब, बहुत पहले एक इंटरव्यू में बीबीसी को आपने बताया था कि आप एक विशेष जाति से आते हैं जो भारत में पिछड़ी जाति मानी जाती है, तो एक फिल्मकार होना और एक पिछड़ी जाति से बिलोंग करना कितना मुश्किल है ये?
कितना, मतलब मुझे तो कोई मुश्किल नहीं लग रहा है। आपने दलित होना मुश्किल है इस दुनिया में, फिल्म मेकर होना मुझे पता नहीं है, क्योंकि आप एज ए फिल्म मेकर मुझे कोई कठिनाइयाँ वैसे तो नहीं आई है सीधे तौर पे। अभी लोगों के दिल दिमाग में क्या है वो तो आप किसी को मतलब समझ नहीं सकते हो, लेकिन यहाँ पे ना जाति का इतना ये है तो आप इंसान कौन से जाति से हो वो वही मुश्किल बात है, तो वो तो है।
क्या आपको कभी किसी जातिगत समस्या का सामना करना पड़ा था?
जो बचपन में मैं टीवी देखने जाता था, मेरे घर में नहीं था, दूसरे के घर में एक हद थी कि यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ से आगे नहीं जा सकते थे, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, खाना अगर आप टिफिन लेके जा रहे हो स्कूल में तो आप शेयर नहीं कर पाते हो, ये बहुत सारी चीज़ें थी जो धीरे धीरे मुझको समझ में आई। फिर एक नज़रिया जो होता है कि आपके जाति की वजह से आपको ऐसे ही कम लोग देखते हैं, पता नहीं क्यों, और ये आप बड़े होते जाते हो, मतलब बचपन में तो कुछ किसी की फिक्र नहीं होती कि आपको क्या समझ रहे हैं लोग, और आपको डांट भी दे तो थोड़ी देर चुप बैठ के फिर हम इतने स्वाभाविक और इतने इनोसेंट होते हैं तो हम फिर से खेलना शुरू कर दें, फिर से बात करना शुरू कर दें, लेकिन जब समझने की उम्र होती है तब हम डिप्रेस होते हैं, तो दुख होने लगता है कि यार ऐसा क्यों कहा, मुझे डांट क्यों दिया सबसे, और यहाँ पे मुझे नकारा क्यों गया।
आपने अपनी फिल्म सैराट में नए चेहरों के साथ काम किया और बजट भी काफ़ी कम था, उसके बावजूद आपने ऐसा किया, क्या ये आपका स्टाइल है या फिर आपको भरोसा था कि फिल्म में ये दोनों चल जाएंगे?
देखिए, एक मेरा एक पर्सनल कारण भी है कि मैं चाहता था जब मैं छोटा था कि मुझे फिल्मों में काम करना है, और तब पता नहीं था कि फिल्मों में काम कैसे करना है, मैं कैसे ऑडिशन नाम का चीज़ भी पता नहीं था कि फिल्मों में लेते कैसे है, तो ये भी पता नहीं था, तब लगता था कि मैं हीरो बन जाऊँ, मैं एक्टिंग करता था, मैं आईने में देख के करता था, मैं हर सब ब्रूस ली से लेके सबका मतलब एक क्रेज तैयार होता था, अमिताभ बच्चन जी का तो मैं बहुत बड़ा भक्त ही कहिए आप, मतलब ऐसा था, अभी भी हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हूँ, तो तब लेकिन गाँव में पता नहीं होता था कि, और गाँव से पता नहीं कि कितने लोग गए होंगे, गए भी होंगे तो हिंदी भाषिक होंगे, मराठी का कोई जाके, मतलब हमारी हीरोइंस है माधुरी दीक्षित से लेके बहुत सारी हीरो, स्मिता पाटिल जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है बॉलीवुड में, लेकिन मराठी के शायद इतने लोग नहीं है, अभी रितेश देशमुख जी हैं, तो तब तो ये पता नहीं होता था, लेकिन अभी लगता है कि मैं हूँ तो चलो मैं गाँव में ऑडिशन जाके करता हूँ, मैं फिल्म बना सकता हूँ तो मैं गाँव में ऑडिशन करता हूँ, ये भी एक है। और दूसरा बहुत ज़रूरी कारण जो है, इम्पोर्टेंट कारण जो है, कि फिल्म जिस तरीके से है, जिस तरीके का किरदार कहानी है, मैं वैसे लोग ढूंढना चाहता हूँ।
आपने फैंड्री बनाई, उसके बाद आपने सैराट बनाई नागराज जी, क्या ये फिल्में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से आपके निजी जीवन से प्रेरित हैं?
देखिए, मुझे लगता है कि हर एक कोई भी हो उसकी निजी जिंदगी, उसका एक्सपीरियंस उसके काम में आता है, आप आरजे भी हो, आप एंकर भी हो, आप राइटर हो, आप वेटर हो, आप कुक हो, तो भी आपका एक्सप्रेशन, आपका जो अनुभव है उससे आता है, तो मैं तो एक ऐसी फील्ड में हूँ जहाँ पे आप एक्सपीरियंस ही बांट रहे हो सीधे, मान लो कि एक गांव का अगर कुक या शेफ है तो वो बनाने में उसका टेस्ट जायका आएगा, तो उस तरीके से मेरे इसमें तो बहुत सारा है, मतलब फैंड्री तो सीधे सीधे मेरे पर्सनल अनुभव से प्रेरित फिल्म थी, सैराट एकदम सीधी कहानी नहीं है, लेकिन मैं आए दिन देखता था, पढ़ता था, सुनता था, और बचपन से भी कुछ एक्सपीरियंस किया था, तो वो सब एक कहते ना उसको कल्पना और वास्तविकता का मेल है जो मैंने एक फिल्म में बनाने का कोशिश किया।
सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई रोल मॉडल होता है, कोई ना कोई इतनी स्ट्रांग पर्सनालिटी होती है नागराज साहब जिससे वो प्रभावित होते हैं और उससे बहुत कुछ सीखते हैं, तो आपकी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट फीमेल पर्सनालिटी कौन रही?
मेरी जो बुआ थी, मेरे पिताजी की जो बड़ी बहन थी, हालांकि मेरी दूसरी बुआ भी थी, वो भी बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन जो बड़ी थी अनुसुईया उनका नाम था, वो मेरे पिताजी से 10 साल शायद बड़ी होंगी, तो एकदम सबसे बुजुर्ग, और वो बहुत ही स्ट्रांग कैरेक्टर थी, और मुझे लगता था कि यार ऐसी लेडी है, और वो बचपन से मुझे पता था कि ऐसी औरतें तो मैंने बाद में देखी कि यार इतनी वीक हो सकती हैं धीरे धीरे, बचपन से जब उनको देखता तो बहुत स्ट्रांग कैरेक्टर थी, वो जो कहती थी वो सबको मतलब महत्वपूर्ण लगता था, या वो कहती थी तो वो सुनते थे लोग, और वो काम भी बहुत करती थी, बहुत संघर्ष करके उन्होंने खुद को एक अच्छी जगह पे एस्टेब्लिश किया था। तो वो कैरेक्टर मेरे लिए और मेरे बहुत करीब थी, हम मतलब वो मुझे कहानियाँ जो भी थी तो मैं उनसे सुनता था बचपन में। मतलब वो इतनी सेंसलेस जिंदगी थी, इर्द गिर्द के लोग इतने बकवास थे आजू बाजू, तो उसमें बहुत सेंस वाली बात करने वाली वो औरत थी। कभी कभी पिताजी और मेरा झगड़ा होता था तो वो उनको समझाती थी कि तू बचपन में ऐसा ही था तो ऐसे मत कर, इतना मत डांट उसको। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि यार कोई तो है जो पिताजी को डांट रहा है, कोई तो है उनको बता रहा है कि ये कि आप बहुत ही ज्यादती कर रहे हो, कि ये गलत ढंग से आप समझ रहे हो बच्चों को।
जी, आपकी सफलता के बाद हर कोई आपकी बात कर रहा है। आमिर खान आपकी बात कर रहे हैं, शाहरुख खान आपकी बात कर रहे हैं, और तो और हाउसफुल 3 में रितेश देशमुख ने भी आपके बारे में बात की। मतलब इतने सारे लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ आपके आसपास बदली है फिल्म सैराट के हिट होने के बाद?
आप गिनवा रहे थे तो मैं हंस रहा था कि ये सही नहीं लग रहा है मुझे, सच नहीं लग रहा है कि जो नाम आप बोल रहे हैं वो तो जैसे कि खाबू की दुनिया है कि शाहरुख, सलमान और ये नाम आप गिनवा रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और दुनिया यही बदल गई कि लोग आप जैसे कहा कि पहचानने लगे हैं आप, मैं BBC पे बात कर रहा हूँ या कपिल के शो पे जा रहा हूँ, या ये बदलाव है। हम तो ऐसे ही होते हैं, हम पहले से ही वैसे होते हैं, और बदलने के लिए कुछ वक्त चाहिए इंसान को, वो वक्त भी मुझे नहीं मिल रहा, और क्या बदलना है वो भी मुझे पता नहीं है। तो मैं तो वैसे ही हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें बदल रही हैं, ये जो आजू बाजू की चीज़ें हैं, और बहुत सारा क्या कहते हैं लोग पहचानने लगे हैं, और मराठी के लोग तो इतना प्यार करते हैं, तो कहीं भी जाता हूँ तो अभी भी आया तो आपके वॉचमैन से लेके सब लोग, और ये मेरी खासियत है कि जो काम करने वाले हैं वो मुझे जल्दी से पहचान जाते हैं और मुझसे बात करना चाहते हैं, फ़ोटो निकालना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि यार ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है, और बदलाव हम खुद जिस तरीके से इंसान होते हैं हम वैसे ही रहते हैं।
क्या बात है, नागराज साहब आपने हमसे बात की और हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे निर्देशक नागराज मंजुले संडे दिन भर में।
मराठी फिल्म के निर्देशक नागराज मंजुले से बात कर रहे थे विदित मेहरा। और अब दिन भर में सुनते हैं खेल समाचार आदेश कुमार गुप्त से। आदेश जी हमारे सामने बैठे हैं, साइना नेहवाल ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब दूसरी बार जीत लिया है। आदेश जी क्या कहेंगे आप?
जी देखिए, बहुत ही शानदार फाइनल मुकाबला था, और जब पहला गेम साइना नेहवाल चीनी खिलाड़ी सुन यू के खिलाफ खेली तो ऐसा लगा कि शायद आज साइना नेहवाल का दिन नहीं है, क्योंकि पहला गेम सुन यू ने 11-21 से अपने नाम किया, और ऐसा लगा कि पलक झपकते ही सब कुछ हो गया। शानदार स्मैश थे और साइना नेहवाल एकदम सहमी हुई सी नज़र आ रही थी, लेकिन जब दूसरे गेम में स्कोर 8-8 तक पहुँचा तो एक छोटा सा ब्रेक मिला जहाँ साइना नेहवाल के कोच ने साइना नेहवाल के कान में कुछ मंत्र फूंका, और उसके बाद ऐसा लगा कि साइना नेहवाल में एक नई एनर्जी का संचार हुआ, और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 21-14 से दूसरा गेम उन्होंने जीता, एक तरह से वापसी की राहत की सांस ली, और जब तीसरा गेम हुआ तो वो गेम बहुत ही लाजवाब था। 21-19 से साइना नेहवाल ने इस गेम को जीता तो ज़रूर, लेकिन आप देखिए कि दिल्ली में जैसे गर्मी है ना, यहाँ बुरा हाल है, तो ऐसी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा और पसीने आ गए, क्योंकि जो सुन यू थी उन्होंने थोड़ी सी गलतियाँ ये की कि साइना नेहवाल के जो रिटर्न थे वो कोर्ट के साइडलाइन के अंदर गिरेंगे या बाहर गिरेंगे, इस जजमेंट में वो थोड़ा सा मार खा गई, 1-2 पॉइंट गंवाए, उसके बाद कुछ रिटर्न उनके नेट पर लगे, और इसके अलावा सुन यू के कुछ शॉट साइडलाइन के बाहर गिरे, जिसका फ़ायदा साइना नेहवाल को साफ तौर पर मिला। एक बहुत दबाव उन पर था, और जैसे ही उन्होंने इस फाइनल मुकाबले को जीता आप देखिए कितनी राहत की सांस ली, उन्होंने अपने रैकेट को दर्शकों की तरफ उछाल दिया, और रियो ओलंपिक से पहले साइना नेहवाल के लिए बड़ी कामयाबी है। उधर अगर लंदन में आयोजित की जा रही हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की बात की जाए तो कल भारत का सामना बेल्जियम से होगा। बेल्जियम की टीम एक अच्छी टीम है, और भारत ने इस जिस तरह से इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार खेल दिखाया, एक तरह से आंखें खोलकर रख दी हैं, इतनी उम्मीद नहीं की जा सकती थी, क्योंकि जर्मनी के खिलाफ पहला मुकाबला उन्होंने 4-4 से ड्रॉ खेला, कल ग्रेट ब्रिटेन को 2-1 से मात दी। अब अगर भारतीय टीम पेनल्टी कॉर्नर को गोल में कन्वर्ट करे और बेल्जियम से गोल ना खाए तो उम्मीद की जानी चाहिए कि कल भारत दूसरी जीत हासिल कर सकता है। और इसके अलावा कल भारत का सामना जिम्बाब्वे से होगा हरारे में, और कल अगर भारत जीत जाता है तो फिर अजय बढ़त भी 2-0 की हासिल कर लेगा 3 मैचों की सीरीज में।
बहुत शुक्रिया आदेश जी, अगले कार्यक्रम में कुछ और आपसे बात करेंगे खेल समाचारों पर। और अब कार्यक्रम खत्म होने वाला है तो सुन लेते हैं प्रमुख समाचार मानसी से एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। अमरीकी शहर ऑरलैंडो में पुलिस ने कहा है कि एक नाइट क्लब में तड़के हुए एक हमले में लगभग 20 लोगों की मौत हो गई है और 40 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इराक से आ रही खबरों के अनुसार मोसुल शहर के दक्षिण में सरकारी बलों ने खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले चरमपंथी समूह पर हमला किया है। लीबिया की नई सरकार समर्थित सेना पर शहर सिरते में कथित तौर पर खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले चरमपंथी समूह के लड़ाकों ने 3 आत्मघाती बम धमाके किए हैं। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 6 दिन की यात्रा के लिए आज अफ्रीका रवाना हुए। वे घाना, आइवरी कोस्ट और नामीबिया जाएंगे। बीबीसी समाचार।
प्रमुख समाचार के साथ ही आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है, लेकिन महज 1.5 घंटे के लिए। घटनाचक्र में दोबारा मिलेंगे। हेमंत कुशवाहा आज स्टूडियो संभाल रहे हैं। सभी साथियों के संग निखिल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।